امام علی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برے دوست سے بچے رہو، کیونکہ وہ دکھنے میں بہت خوبصورت ہے لیکن اثر میں بہت خطرناک۔ پروگرام صبح زندگی میں بہت بہت خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح زندگی میں بہت بہت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تہران اسٹوڈیو سے۔ 6:34 کا ٹائم ہو رہا ہے ایران ٹائم کے مطابق، اور ایک خوبصورت سا گرم گرم سا پروگرام لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ روبا بھی موجود ہیں۔ سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں،
کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، میں بھی اپنی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم، امیدوار ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنی خوبصورت سی صبح کا آغاز ہمارے خوبصورت سے پروگرام صبح زندگی کے ساتھ کر چکے ہوں گے۔ جی،
یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اور یہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ترقی کریں اپنی زندگی میں تو اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں،
بالکل،
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہترین بن جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پرفیکٹ ہوں تو آپ اپنی زندگی میں ہر ایک مدت کے بعد جو ہے وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔
بالکل، بہت اچھی،
یعنی جتنی زیادہ تبدیلی ہوگی اتنے زیادہ آپ ترقی کرتے جائیں گے۔
دیکھیں، تبدیلی صرف کام میں ہی نہیں، لباس میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، ہر چیز میں ہونا چاہیے۔ ایک طرح سے انسان کو ایک نیا، ایک تازہ کر دیتا ہے انسان کو ایک طرح سے۔ اب ہر روز ایک ہی کپڑا پہننے سے، ہر روز ایک ہی رنگ استعمال کرنے سے خود انسان بور سا ہو جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے؟
بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے، اور حتی یہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے بھی اس پہ بات ہوئی ہے کہ گھر کی سیٹنگ، ٹیبل کو، کچھ لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل بھی اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ ایک ٹیبل جو یہاں پڑی ہے یار تھوڑا سا اٹھا کے اس کو اس طرف رکھ دو۔
پتہ مسئلہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہاں پہ کیا یہ مرد حضرات میں ہوتا ہے، اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ اٹھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے۔
یہ بھی مسئلہ آپ نے بالکل ٹھیک،
اگر خواتین کی نظر سے دیکھیں تو وہ تو بولیں گے ہر سیکنڈ بار چینج کرتے رہو۔
صحیح، بالکل ٹھیک۔ اچھا، ایک اور، لیکن دوسری طرف ایک اور بات بھی یہاں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ لکھا یہ ہوا ہے یہاں پر، ایک کسی شخصیت نے بولا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کم سے کم تبدیلیاں رکھیں تو آپ اپنے مقصد پہ پہنچیں گے۔ اب یہ جو انہوں نے بات لکھی ہے ان کا مطلب کچھ ایسا ہے کہ کچھ لوگ، جیسا کہ ہوتا ہے نا، اگر یونیورسٹی میں فیلڈ انتخاب کرنی ہے کہ کیا فیلڈ پڑھنی ہے، کہ سبجیکٹ پڑھنا ہے، پہلے آ جاتے ہیں جی، مثلا میں خود ابھی میرا ایک دوست ہے، وہ پہلے الیکٹریکل انجینئرنگ میں تھا، اس نے الیکٹریکل انجینئرنگ چھوڑ کے جو ہے وہ میڈیکل میں آ گیا۔ تو البتہ خیر ایران میں یہ کام کیا جا سکتا ہے، پاکستان ہندوستان میں نہیں ہو سکتا، لیکن ایران میں جو ہے کیا جا سکتا، تو وہ آ گیا۔ اب یہ میرے خیال سے ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہے۔
یہ آپ اس کو بولیں تبدیلی بول دیں ہم اس کو، یا ایک شاخ سے دوسرے شاخ پہ اڑنا بول دیں،
بالکل
آپ ایک جگہ ٹکے نہیں رہتے،
ٹکے نہیں رہتے، اس پہ بات کریں گے۔ روبات یہاں پر ایک چھوٹا سا ہم نے وقفہ لینا ہے جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور کس لیے رابطہ اس لیے کہ آپ لوگ بھی ہماری بحث، جو ہماری بات ابھی چل رہی ہے، یا ہمارے جو مہمان آئیں گے ان کے ساتھ جو ہماری بات چلے گی، اس میں شامل ہو سکیں۔ تو چلتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے رستے دیکھ لیے کیسے آپ لوگ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال مزہ آتا ہے کبھی کبھار لائیو پروگرام میں شامل ہونے کا۔ مجھے پتا ہے بہت سے مختلف چینلز پہ مختلف لائیو پروگرام چل رہے ہوں گے، لیکن ہمارے پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ آپ جس ٹائم پہ جو میسج دیں گے، میرے پاس فیس بک ابھی کھلی ہوئی ہے، میں اس ٹائم وہ میسج، وہ سوال، وہ مشورہ پڑھوں گا، وہ تصویر بھی، جی اگر آپ تصویر بھی شیئر کرنا چاہیے۔ کون ہے ہمارے ساتھ آج مہمان؟
ہمارے ساتھ آج جمعرات کا دن ہے، اور ناظرین کو اچھی طرح پتا ہے کہ جمعرات کا دن ہوتا ہے کھانے پینے کا، مزیدار باتوں کا دن ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عثمان خالق ہوں گے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے، دیکھتے ہیں آج وہ کون سا مزیدار اور گرما گرم موضوع لے کے آئے۔
بالکل انشاءاللہ، اور امید کریں گے ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئے گا، اور وہ بھی بحث میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شامل ہوں گے۔
جی
تو کیا خیال ہے، چلیں زنجان کی طرف؟
بالکل چاقو چھوریوں والے شہر،
بالکل چاقو چھوریوں والے شہر۔ لیکن پھر میں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ چاقو چھوریوں والے شہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں خون خراب ہوتا ہے، یہاں پر سنتی قسم کی جو جس کو کہہ سکتے ہیں کلچرل एक आपको जो है
रिवायती चाकू
तस्वीर
है
नजर आती
जी
है जंजान में, और चाकुओं के पर काम करना, और बड़े खूबसूरत किस्म के चाकू, तेज शायद वो ना हो लेकिन खूबसूरत होते हैं क्योंकि वे मुख्तलिफ,
डेकोरेशन के लिए मेरे ख्याल से अच्छे
बिल्कुल
होंगे,
डेकोरेशन
बिल्कुल
ही के लिए ज्यादातर इस्तेमाल, क्योंकि
जी
बहुत महंगे भी होते हैं वो,
अच्छा,
यानी छोटा
कभी
सा
मेरा
इतना
जाना
सा,
हुआ नहीं, जरूर
जी
जाना
मैं
चाहिए
क्योंकि गया
तो
हूँ, छोटा सा इतना सा भी चाकू आपने वहां से लेना है, उस पर अगर काम हुआ होगा तो बहुत है।
जी।
बहरहाल हमें बताया जा रहा है कि ज्यादा बातें ना करें आप लोग, और जल्दी से एक वक्फा लें, और वक्फे में चलें जंजान, और जंजान के बाद हम लोग आएंगे स्टूडियो में डॉक्टर उस्मान खालिक के साथ।
नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं। आज आपको लेकर आए हैं एक मशहूर म्यूज़ियम जो कि आज़रबैजान के एक मशहूर शहर और उस्तान में जो कि जंजान है उसमें वाक़ है, उसमें आपको लेकर आए हैं। इस म्यूज़ियम में आपको हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत कामयाब हैं वो आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं मेरे साथ ही। जी तो नाज़ जी तो नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं। इस म्यूज़ियम को बनाने में जिस बंदे का हाथ है उसका नाम है हाजी अली अकबर तौफीकी, जिसने आज से 84 साल पहले इस म्यूज़ियम को बनाया था, और यानी 1307 में इसने ये इस म्यूज़ियम को बनाया था। जी तो आपको बता रहा था कि ये जो इनका बख्श है, ये जो किस्मत है, इस बनाने वाले ने, इसके मुअस्सिस ने मखसूसन जो है ना औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया था, और इसमें 4 हौज़ जो हैं वो उसने बनाए थे, और इसमें जो पानी की गुंजाइश है वो है 740 मीटर, इतनी इसमें पानी रखने की गुंजाइश है। और जो सालन शुस्तुशु है, यानी यहाँ पर जो इधर कपड़े वगैरह धोने के लिए या पानी पीने के लिए जो बनाते थे, जो हौज़ उन्होंने बनाए थे, इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो 63 मीटर जो है वो इसकी लंबाई है, और जो चौड़ाई है वो 13.5 जो है ना मीटर वो है। तो इसका जो इसकी पानी की जो बुलंदी थी वो तकरीबन 10 से 12 मीटर है, और इससे अगर ऊपर जाएंगे तो उधर बैठने के लिए वो जो सरदार था इनके बैठने के लिए उधर जगह बनाई हुई थी। और जब हम बाहर जाएंगे हयात में तो उसमें हम देखेंगे कि दरख्तकारी के लिए थोड़ी सी उन्होंने जगह मुख्तस की हुई थी, जिसमें वो दरख्तकारी करते थे और दरख्त वगैरह लगाते थे। लेकिन ओवर हयात यानी जो बाहर लान का जो इन्होंने वो रखी थी लंबाई और चौड़ाई, वो लंबाई जो उसकी है वो 33 लंबाई है, 33 मीटर, और 12 मीटर जो है वो चौड़ाई है। तो इसके बाद हम बाहर जाएंगे तो आपको जो है ना वो बाकी सारी जो है ना उसकी डिटेल जो है वो प्रोवाइड करेंगे। रहे हैं ये उस बंदे की तस्वीर है जिसने इस म्यूज़ियम को बनाया है, यानी हाजी अली अकबर तौफीकी, जिसने आज से 84 साल पहले इसको बनाया था। जी तो नाज़रीन, मैंने आपको बताया है कि इस म्यूज़ियम का ये जो एक भी पार्ट है इसमें इन्होंने कुछ हशरात और जानवरों की जो है ना वो रखे हुए हैं, जो बचे खुचे हैं। तो इसमें इन्होंने तकरीबन, मैं आपको बताता चलूँ कि 20,000 के करीब इधर इन्होंने कुछ अशिया रखी हैं, और ये इसका जो है ना वो किस्मत है, वो फरहंगी है, फरहंगी और तारीखी है। ये तारीखी अशिया जो इन्होंने रखी हैं, इनमें कुछ ये हशरात आते हैं, यानी आपको नज़र आ रही होंगी तकरीबन सारी तस्वीरें उन्होंने हिरनों की, जितने वैशी जानवर हैं, जितने इनके घर में पालतू जानवर होते हैं, इन्होंने तकरीबन सारे इसमें रखे हुए हैं, आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं।
जी नाज़रीन, आपको एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और जैसे कि मैंने कहा था कि जिंजान की सैर के बाद आप लोगों को हम लोग सैर करवाएंगे डॉक्टर उस्मान खालिक की, और सैर करवाने से मेरा मतलब ये है कि हम लोग जाएंगे उनकी अच्छी अच्छी और मुफीद और अहम बातें सुनेंगे। तो चलते हैं रुबाब के पास ताकि रुबाब गुफ्तगू को उनके साथ चला सकें। जी रुबाब,
बहुत शुक्रिया खुर्रम। जी नाज़रीन, आपने देख लिया कि उस्मान खालिक पहुंच चुके हैं, हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खुश आमदीद, अस्सलाम
वालेकुम।
आपने अपना वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज का मौजू जो आपने बताया, कच्चा दूध और बाजारी दूध में जो फ़र्क है, नाज़रीन बताते चलूँ पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने कुछ इशारा दिया था इस तरफ कि हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। फ़ौरन चलते हैं मौजू के पास। जी, कच्चा दूध और बाजारी दूध, ये बाजारी दूध कौन सा वाला दूध की बात हो रही है, ये तो बताएं पहले।
सही, पहले तो मैं खुर्रम भाई से बात करता चलूँ कि मेरी बातें अच्छी अच्छी नहीं, ड्रोनी ज़रूर होती हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम में मैं कोई ना कोई जो है वो इस किस्म की ड्रोनी बातें उठा कर ले आता हूँ।
एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ, वो ये कि कल रेडियो पे मैं ईरानी रेडियो पे ये सुन रहा था कि जब आपने ब्रेक लगानी हो गाड़ी की तो क्लच ना दबाएं, क्लच सिर्फ आखिरी सेकंड में जब आपने पूरी ब्रेक लगानी है तो लगाएं। मेरी आदत जो है वो ये है कि मैं तकरीबन एक मिनट पहले क्लच पे पाऊँ मेरा आ जाता है और फिर मैं हल्की हल्की ब्रेक लगाना शुरू करता हूँ। तो उसमें उन्होंने बताया कि पेट्रोल आपका ज़ाया होता है और क्लच प्लेट। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं इस दुनिया में कि छोटी सी छोटी बात भी जो आप लोग जहमत करते हैं और यहाँ पर प्रोग्राम में आके हमारे नाज़रीन को बताते हैं, मेरे कहने का मतलब ये छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बात तो हर किसी के लिए जो है वो मुफीद होती
हो सकती है। बिल्कुल, जैसे हमें पता नहीं था कच्चे दूध कितने फायदे होते हैं।
बिल्कुल सही,
असल में बातें ड्रोनी होती हैं, लेकिन वो चूंकि हमारा एक माइंड सेटअप बन चुका है और हमारे कुछ ट्रेडिशन इस तरह की बन चुकी हैं कि वो हमें अजीब व गरीब लगती हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास इल्म है अगरचे महदूद सा है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनको बताया जाए,
नज़रिए से बताया जाए। बिल्कुल,
बाजारी दूध की तरफ आते, कच्चे दूध का मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है और कच्चा दूध बजाते खुद क्या होता है। बाजारी दूध की दो इकसाम हैं, एक आजकल जो कि बहुत आम हो चुकी है वो है कंपनीज कॉरपोरेट्स जो कि मार्केट में लेकर आती हैं दूध आपको टेट्रा पैक्स की सूरत में,
डब्बा पैक
जी बिल्कुल। दूसरा दूध वो है जो कि आपको आम गवाले हजरात अपनी दुकानें बनाकर वहाँ पर उन आप खुद आपको जाकर लेना पड़ता है वो,
और
वो
आधा आपको, पानी और आधा दूध
जी आपको प्लास्टिक की थैलियों में लेना पड़ता है। पहले मैं इस दूध के मुतालिक बता दूं, ये है कि जो कंपनीज उसको जिस प्रोसेस के थ्रू गुजारती हैं केमिकल्स और पेस्टराइजेशन होमोजनाइजेशन, उसकी तरफ मैं तफसील में बाद में आऊँगा। ये गवाले हजरात जो काम करते हैं उनका एक तो ये है कि आपने कहा कि पानी मिला देते हैं, बाज होते हैं हजरात जो कि ईमानदार होते हैं वो ये काम नहीं करते, लेकिन तब भी अक्सरियत उनकी है जिनके दिमाग में जो है वो हमेशा पैसे का लालच होता है। दूसरा जो वो गलत काम करते हैं वो ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि वो नीले रंग के बड़े बड़े प्लास्टिक के ड्रम्स के अंदर दूध लेकर आते हैं। आपको याद होगा पानी की जिस वक्त हम बात कर रहे थे उसमें मैंने आपको ये तफसीलन बताया था कि प्लास्टिक की कंटेनर्स या बोतल के अंदर जो है वो कोई भी खाने पीने की चीज़ रखना, खास तौर पे जो लिक्विड है वो कितनी ख़तरनाक होती है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हमारा टेम्परेचर मिडल ईस्ट और पाकिस्तान इंडिया इन ममालिक में जो है वो टेम्परेचर
गर्मी की तरफ
काफ़ी होता है, उसकी वजह से वो जो दूध उसके अंदर मौजूद होता है वो केमिकल्स और वो जो जितने भी टॉक्सिन या जितने भी जहरीले मवाद होते हैं उसके प्लास्टिक के कंटेनर में वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर मिलते रहते हैं।
अच्छा।
दूसरी बात ये है कि वो हमेशा आपको प्लास्टिक के थैली के अंदर जो है वो दूध लेकर देते हैं।
बिल्कुल।
प्लास्टिक की मैं आपको बात बता चुका हूँ। दूसरी बात ये है कि प्लास्टिक की थैली हमेशा सफेद रंग की होती है, आपने जैसा कि देखा है जिसके आर पार आप देख सकते हैं। दूध को अगर किसी ऐसी चीज में रखा जाए जिसके आप आर पार देख सकते हो, जिसको ट्रांसपेरेंट आप कह लें या इवन के ट्रांसलूसेंट भी हो, वो उसमें यह होता है कि विटामिन बी ज़ाया हो जाते हैं सनलाइट्स की वजह से।
अच्छा,
तो उसका एक नुकसान यह है। आते हैं कॉर्पोरेशंस जो दूध पैदा करती हैं, ये हमने बड़ा बचपन में भी सुना है और हमें जो है वो रट्टे भी मारने पड़ते थे कि पैस्चराइजेशन की जो है वो दो एग्जाम होती हैं, उसके बाद होमोजनाइजेशन। मैं इस तफसील में जाना मुनासिब नहीं समझता कि पैस्चराइजेशन की दो क्या किस्में हैं, लेकिन यह है कि आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में मैंने आप को बताया था कि दो किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, एक कैसे प्रोटीन्स और वे प्रोटीन्स। 20% जो प्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर दूध को दो किस्म के प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है पैस्चराइजेशन में। एक के अंदर उसको अमूमी तौर पर कम हीट पर जो है वो उसको गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, और एक पर बहुत छोटे वक्त के लिए बहुत ज्यादा ऊंची आंच पर उसको अल्ट्रा UST कहते हैं।
अच्छा।
और वो दूध जो है वो 2 से 3 महीने के लिए प्रिजर्व रहता है, जबकि पहला दूध जो है वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के लिए जो है वो प्रिजर्व रहा जा सकता है। हमें ये बताया जाता है कि ये बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए और इस किस्म की चीज़ों के खात्मे के लिए इसको इतना किया जाता है।
सही।
असल में ऐसी कोई भी बात नहीं है।
सही।
ये सब की सब जो है वो बुनियादी तौर पर पैसे की गेम है।
अच्छा।
वो कैसे कि आप ये देखें कि आप दूध जब जानवर से हासिल करते हैं तो वो दूध ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिनों तक जो है वो फ्रेश रह सकता है, और आजकल मतलब कि हमारे माहौल में टॉक्सिन्स वगैरह और वो कुछ इस किस्म का माहौल है कि वो शायद ही 1 या 1.5 दिन से ज़्यादा जो है वो फ्रेश या सही सलामत रह सके। ये एक बहुत बड़ी मोनोपोली, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था जिसमें लोगों के जहन में ये चीज़ डाली गई कि बैक्टीरिया और इसके अंदर बड़ी जो है वो नुकसानदेह किस्म की चीज़ें होती हैं, और उसके लिए ये जो है वो प्रोसेस इन्वेंट किए गए। इसका मकसद जो है वो दूध को आपकी सेहत के लिए बेहतर बनाना नहीं बल्कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना था।
अच्छा।
शेल्फ लाइफ से मुराद ये होती है कि आप दूध को उठाकर आप शेल्फ में रख दें और ये 2-3 महीने तक मेरे पास सेफ है। आज कोई ग्राहक आता है ठीक है आज मेरे से खरीद ले, नहीं आता है हफ्ते बाद आता है तब भी मेरे पास दूध मौजूद है। तो ये बुनियादी तौर पर पैसा कमाने की एक चीज़ है, और जब शुरू में ये प्रोपेगेंडा उठाया गया था तो उसके अंदर इन लोगों ने एक टाउन एक कस्बे का अमेरिका के अंदर एक कस्बे के मुतल्लिक बताया था कि वहाँ पर दूध पीने से बहुत सारे लोग बीमार हो गए। और अब लोगों के अंदर तो तहकीक वगैरह का रुझान नहीं होता। मैंने इस चीज़ के मुतालिक जो है वो पढ़ा वो ये था कि वो जिस قصبے کے متعلق ان لوگوں نے بات کی تھی اور جو پورا واقعہ بیان کیا تھا، وہ قصبہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ ایک امیجنری ٹاؤن تھا اور اس قصبے میں لوگ بھی نہیں تھے، اور وہ گھڑی گھڑائی ایک کہانی تھی،
ایک خیالاتی کہانی
بنائی تھی، اور آپ کو پتا ہے کارپوریٹ انڈسٹریز جو ہے وہ اسی طریقے سے کام کرتی ہیں، تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. اس کے بعد آتے ہیں کہ یہ کمپنیز کرتی کیا ہیں. آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس میں جو ہے وہ یہ بہت سارے ٹیکے وغیرہ اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شامل کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دودھ کی نیچرل کمپوزیشن ہوتی ہے وہ اس کو گڑبڑ کرتی ہیں. مثال کے طور پر جو فیٹس ہوتے ہیں وہ یہ فیٹس وہاں سے نکال لیتے ہیں اور اس سے دوسری چیزیں، مثال کے طور پر کریم یا مکھن یا دہی وغیرہ، اس قسم کی جو ہے وہ یہ چیزیں بناتے ہیں. اور دودھ کو اب جو اصل قیمت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ پر بیچتے ہیں. مڑ پھر کر کہانی پھر وہی پیسے کی گیم پر آتی ہے. اب جب وہ یہ کام کرتے ہیں، مطلب کہ یہ فیٹس ختم کرنا، یا اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ الٹرا ہائی ٹیمپریچر پر جو ہے وہ پروٹینز آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دودھ آپ کی مکمل غذا نہیں رہتی. اس کے علاوہ گایوں کو اور تمام جانور جن سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے،
انجیکشنز وغیرہ،
ان کو ایسٹروجن کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے فائدہ کہ اگر ایک جانور عام طور پر 1 کلو دودھ دے رہا ہے مثال کے طور پر، تو وہی جانور 10 کلو دودھ دیتا ہے. اور اس کے نقصانات یہ ہیں کہ وہی ایسٹروجن آپ کے دودھ کے تھرو آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے، اور یہ مردوں کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. نہ صرف مردوں کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے بلکہ یہ دل کی بیماریوں کا سبب بھی بن رہا ہے. حالیہ ہارورڈ یونیورسٹی میں اس چیز کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے، وہ ان لوگوں نے بڑی سختی سے اس چیز پر تنبیہ کیا ہے کہ بھئی اگر آپ دودھ پینا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ دودھ کے لیے آپ کے پاس اپنا جانور موجود ہو اور آپ کچا دودھ حاصل کریں، نہیں تو بہتر ہے کہ آپ کو دودھ اگر مفت بھی دیا جا رہا ہے تو اس کو مت پئیں. وہ اتنا نقصان دہ ہے. دوسری چیز یہ کہ ہوموجنائزیشن کی طرف میں آتا ہوں. ہوموجنائزیشن کیا چیز ہے؟ عام طور پر آپ نے دودھ میں دیکھا ہوگا کہ جب آپ دودھ حاصل کرتے ہیں تو لکوڈ یا مایا جو ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور جو کریم ہوتی ہے وہ اس کی سطح کے اوپر
بالکل.
لیکن جب آپ بازاری دودھ لے کر آئیں، چاہے گوالے سے ہو یا خاص طور پر جو کارپوریٹ انڈسٹریز کا پیدا کردہ دودھ ہوتا ہے، اس میں آپ کو بلائی نام کے اوپر چیز نہیں ملے گی. وہ دودھ بڑا ایک
صاف ستھرا
یونیفارم قسم کا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو پیئیں تو اس کے اندر آپ کو چکنائی کا احساس ہوگا. کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ یہ میکسیمم بلائی اس کے اندر سے اتار لیتی ہیں، اور یہ ہے کہ دودھ کا ایک یا دو مولیکیول جو واٹر کے ہوتے ہیں، جو نیچے لکوڈ مولیکیول ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ایک فیٹ کا مولیکیول جو ہے وہ جوائن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نیچرل کمپوزیشن نہیں ہے. دودھ کی نیچرل کمپوزیشن میں نے آپ کو بتایا، یہ بلائی اوپر اور لکوڈ نیچے. اب کرنے کو تو انہوں نے کر دیا، لیکن یہ ہے کہ یہ دودھ انتہائی نقصان دہ ہے اور یہ کس قسم کی بیماریاں پیدا کرتا ہے.
آگے چل کے جی ہمارے کو چلنا ہے خورم کے پاس. جی خورم
جی بہت شکریہ. یہاں پر ہم لوگ تھوڑا سا تازہ ہونے کے لیے جائیں گے اسٹوڈیو سے باہر، اور تھوڑی سی خوبصورت تصاویر اور خوبصورت سی موسیقی میوزک سنیں گے. اس کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں ایک بار پھر پروگرام میں. ایک کمنٹ ہمارے پاس آیا علی ناظر صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آن لائن جواب تو سارے آج کل پروگرام میں دے رہے ہیں، خاص بات آپ کے پروگرام کی یہ ہے کہ اس میں کسی کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، اور آج کل ہر چینل پہ جو بھی پروگرام آ رہے ہیں اس میں ایسا پاک اور دلچسپ پروگرام دیکھنے میں نہیں ملتا جو کہ پوری فیملی کے ساتھ دیکھا جا سکے، اور بہت معلومات، اسلامک سوچ اور بہت اچھی تہذیب باتیں سننے کو ملتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے جو ہے ہمارے پروگرام کی تعریف کی. بہرحال ہم لوگ چلیں گے رباب کے پاس تاکہ رباب گفتگو کو آگے چلا سکیں.
جی بہت شکریہ خورم، اور بہت شکریہ علی نادر صاحب، بہت ہمارے ریگولر ویور ہیں ہمارے پروگرام کے. جی ہم کچھ خاص بات کر رہے ہیں، بیماریوں کی طرف آپ جا رہے تھے. جی تو اس پر
یہ جو دودھ کی نیچرل کمپوزیشن یا جو اس کا
اصلی بناوٹ جو ہے،
جی ریسرچز نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ یہ آج کل کے ہونے والی دل کی بیماریوں میں، اس کے علاوہ ہائپر ٹینشن میں، اور ہماری جو یہ آرٹریز کے اندر فیٹس وغیرہ یا ایتھروجینیسس ہوتی ہے جس کی وجہ سے مزید ہائپر ٹینشن پیدا ہوتی ہے، یہ ان چیزوں کا سبب ہے. اس کے علاوہ شاید یہ چیز کچھ ناظرین کو معلوم بھی ہو، لیکن ابھی جو میں آپ کو چیز بتانے والا ہوں شاید ہی کسی کے علم میں ہو، وہ یہ ہے کہ ان ये कंपनीज एक बाकायदा एक स्कीम के तहत इस दूध के अंदर एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटीबायोटिक्स और मूड स्टेबिलाइजर और इस किस्म की 4-5 किस्म की दवाइयाँ भी मिलाती हैं।
तो उनको ये नहीं कोई कानूनी कार्रवाई वगैरह नहीं होती है जैसे मिला सकता
ये असल में हुकूमती सतह की तरफ से होता है।
अच्छा,
मैं बहुत सारे ममालिक की बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमारे आजकल जो तहकीकात और जितने भी उलूम का मंबा है वो बुनियादी तौर पर अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से आता है। अमूमी तौर पर मैं अमेरिका को जो है वो मद्देनजर रख कर जो है वो बात करता हूँ, वहाँ पर ये चीज़ है कि कंपनीज जो है वो ये तमाम चीज़ें हुकूमती सतह पर करती हैं। और ये किस लिए करती हैं ये बजाते खुद एक बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर फिर किसी दिन आएंगे।
मतलब मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहूँगी, आपने देखा अक्सर टीवी में प्रोग्राम्स हो रहे बाकायदा इस मुतल्लिक कि भाई आप फला खुला दूध ना लें या बाहर से जो आपको एक कच्चा दूध जैसा है वो ना लें, सिर्फ टेट्रापैक ही लिए बच्चों के लिए, स्कूल में बाकायदा आप देखें प्रोग्राम्स हो रहे हैं या वो कार्टून कैरेक्टर्स दूध का ड्रेस पहन के आते हैं, बोलता है कि आपको हतमन यही पीना चाहिए इस तरह। तो यानी ये सब ये ऐसी बातें, यानी
आप इस चीज़ में आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लड़ाएं तो आपको जो है वो सारी बातें समझ आ जाएंगी कि बुनियादी तौर पर पैसे की गेम है। ये कौन करता है? वो लोग जाहिर सी बात है इश्तहारात के लिए पैसे देते हैं और ये मतलब कि इतना पैसा लगाते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ एक इश्तहार टीवी पर चलाने के 2-3 अरब डॉलर जो है वो देती हैं।
अच्छा।
कंपनीज के मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा।
एडवर्टाइजमेंट के लिए
बिल्कुल।
अच्छा।
आप क्या समझती है कि भाई ये लोग महज लोगों की फलाह व बहबूद के लिए जो वो ये काम कर रहे हैं?
सही है जी,
ये इसके लिए थोड़ा बहुत सोच विचार अगर बंदा करे तो बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ जाती हैं। इसके अलावा जो स्किम मिल्क या आजकल जो आमतौर पर ये कंपनीज खुद कहती हैं कि लो फैट मिल्क और ये तमाम चीजें, हमेशा याद रखें कि ये दूध की नेचुरल कंपोजिशन नहीं है। दूध वही बेहतर है जो कि अपनी नेचुरल कंपोजिशन के साथ है, उसमें जितना फैट है जितना प्रोटीन है आप उसको उसी तरीके से पिए, कच्चा दूध जो है।
तो बहुत शुक्रिया, हमको चलना है हमारे
जी बिल्कुल माजर के साथ, मुझे भी थोड़ी सी बातें करने दें, आप लोगों ने काफी बातें कर ली हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज जो आपने बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब वो ये है कि थोड़ा सा अगर सोचा जाए ये जो मसला है थोड़ा सा सोचने वाला एक बहुत अहम मसला है। सोचना थोड़ा सा होता है लेकिन इसके ये कि आप डिसाइड कर सकें कि आपने सोचना है या नहीं सोचना ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल मैं जल्दी जल्दी छोटी सी मुख्तसर बातें आप लोगों की खिदमत में लेके आया हूँ। एक जो बात है वो बहुत ज़रूरी बड़ी अहम बात है SMS के बारे में, और SMS आजकल जो ऐसे ऐसे पैकेजेस आए हुए हैं 5 रुपए में 500 SMS और 10 रुपए में 1000 SMS। बहरहाल इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तरक्की हो रही है, लेकिन कुछ हर चीज़ के वो कहते हैं ना तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक तरफ आप देखते हैं कि उसके फ़ायदे भी हैं, दूसरा कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं इस मोबाइल फ़ोन के जो बड़ा खूबसूरत दिखने में मिल रहा है और ख़ास कर जो इस तरह के जिनका कीपैड होता है बड़ा आसानी से उससे जो है SMS टाइप किया जाता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर एक मेरे पास वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च यहाँ पर मौजूद है और उसमें ये लिखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा SMS करते हैं उनको नींद की मुश्किलात जो है उनको पेश आना शुरू हो जाती हैं। क्यों? उसकी वजह उन्होंने यहाँ पर ये लिखी है कि वो एक किस्म का एडिक्ट हो जाते हैं इस SMS देने और SMS का जवाब देने के लिए। एक ऐसी चीज़ है जो मैं और आप बहुत से लोग इसका जो है तजुर्बा कर चुके हैं कि SMS की एडिक्शन होती है, इंसान देता है SMS तो वो जो है उसका इंतज़ार भी करता है और जैसी वो बेल बजती है तो बंदा फौरन जो है उसकी तरफ जाता है। बहरहाल इसमें जो रिसर्च जो हुई है वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब वो हुई है जो यूनिवर्सिटी के पहले साल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पर रिसर्च हुई है और कहा गया है कि सबसे ज़्यादा SMS जो किया जाता है वो इन्हीं में देखा जाता है। अब जैसे ये पहले साल का तो नहीं लग रहा ये लड़का, लेकिन ये है कि बहरहाल ये जो है इनके जो है ये लोग कहा जाता है कि जब पहले साल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा SMS आप और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है। तो उन्होंने इस पर कहा है कि जो जिन बच्चों को नींद का प्रॉब्लम है वो इसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि वो हमेशा इस इंतज़ार में होते हैं कि रात के टाइम पे उनको किसी टाइम पे भी उनके वो अनकॉन्शियस जहन में एक चीज़ होती है कि SMS आना है, तो उसी वजह से हमेशा वो जो है जब सो रहे होते हैं तो उनके जहन में ये चीज़ आती रहती है कि जी हमारा हो सकता है SMS आ जाए और हो सकता है हम जवाब देर से दें, तो उस परेशानी से उनको नींद 12 सही तरह नहीं
आती। चलूं कि ये कंपनी से बड़ी चालाक होती है, रात को 12 बजे के बाद एसएमएस कुछ तो फ्री कर देते हैं या कुछ अनलिमिटेड ऑफर्स लगा देते हैं।
बिल्कुल,
तो ये भी इनकी
एक और आप भी बात बताते चलूं आपको कि एसएमएस के अलावा इंटरनेट भी रात के टाइम भी फ्री है। अच्छा ठीक है जी, चलते हैं एक वकवा लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। खुश आमदीद आपको एक बार फिर। खरीदारी करना घर जब आप जाते हैं, एक अक्सर उसमें जो है थोड़ी बहुत परेशानी होती है, बंदे को मुख्तलिफ चीज़ें देखने में मिलती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें खरीदने का जी चाहता है। एक बड़ी दिलचस्प बात जो यहाँ मुझे पढ़ने में मिली और जो हसन भाई के तवस्सुत से मुझे मेरे पास पहुँची है, वो ये है कि जब आप खरीदारी के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें कि कुछ खा पी के जाएं, क्योंकि ये जो मसला है ये बिल्कुल ही बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि मसला मेरे से भी पेश आ चुका है कि अगर आप खाली पेट कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और अगर आप गलती से किसी बड़े सुपर स्टोर में, जनरल स्टोर में घुस जाते हैं जहाँ पर सब कुछ है, तो आप उस चीज़ की तरफ जाएंगे जिस जो मीठी है, जिसमें आपको फौरी तौर पे एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। तो खा पी के जाएं, पेट भरा हुआ हो, ताकि जो है आप बिस्किट, चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ों की तरफ कम से कम जा सकें। उसके अलावा एक और जो चीज़ लिखी गई है वो ये है कि हमेशा कोशिश करें, ये आदत डालें अपने अंदर कि आप जब भी कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर जो एक लेबल लगा होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर किस किस चीज़ की कितनी मकदार मौजूद है, उसको ज़रूर पढ़ें, आदत डालें। उसके अलावा सब्जियों और फ्रूटों के बारे में, जैसे कि आप लोगों को खुद भी मेरे से भी बेहतर मालूम है कि जितना आप देखेंगे जाहिर में आपको सब्ज़ी ठीक अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी है, उस पर कोई ख़राश नहीं है, उसका पैकेट जो है कुछ दुकानों पे जो है पैकेटों वगैरह में आती हैं, बहरहाल ये सारी चीज़ें देखें। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है वरना मैं आगे भी आपसे बात करता, हमने जाना है हिंदुस्तान भी जाना है, फिलहाल तो हम लोग चलेंगे रुबाब के पास
जी। बहुत शुक्रिया खुर्रम जी। डॉक्टर साहब एक लाइन में आप बताएं, कच्चा दूध या बाहर का दूध?
लाइन से बेहतर है कि मैं आपको एक और एक अहम बात बताता चलूँ, वो ये है कि तमाम दुनिया में इस चीज़ पर रिसर्च की गई है और आजकल एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, वो है वो ख़ास तौर पर औरतों के अंदर इनफर्टिलिटी, बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होती, और आलमी रिसर्च से ये बात सामने आई है कि ये दूध जो है वो इस चीज़ के लिए 27%
काफ़ी गहरा असर रखती है,
गहरा असर रखता है, क्योंकि इसके जो फैट्स निकाल दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था फैट्स निकाल दिए जाते हैं, वो आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद गुफ्तगू रही, बहुत शुक्रिया। हमको हिंदुस्तान भी चलना है, आप यहाँ तशरीफ लाए का बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन चलते हैं, देखते हैं खूबसूरत सा वीडियो क्लिप, अपने आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
आगे आप लोगों की खिदमत में हम लोग दोबारा एक खूबसूरत सी मौसीकी, ईरानी मौसीकी आपने सुनी सालार अकीली साहब की आवाज़ में, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान से डॉक्टर अतिया निषाद साहिबा और तग़ज़िये की गज़ाई जो है उसकी माहिर हैं, तो मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ अतिया साहिबा जी। मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ।
वालेकुम अस्सलाम
जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फिर हमारे प्रोग्राम में हम टाइम दिया
जी, बहुत शुक्रिया
जी। रुबाब आप सवाल
जी। अतिया साहिबा अर्ज अदब के साथ, आज का हमारा मौजू है बच्चों की कज़ा, तो सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि बच्चों की कज़ा किस किस्म की होनी चाहिए?
जी बहुत ही ख़ास मौजू है ये बच्चों की ग़िज़ा। देखिए अक्सर वालदैन ये सोचते हैं कि बच्चों को अगर बड़ा होना है, हाइट बढ़नी है, उनके ग्रोथ है और उसके उनके डेवलपमेंट के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। अक्सर ये देखने में आया कि जैसे बच्चे ने पूरा नाश्ता कर भी लिया है तो उसके बाद उसको दूध का ग्लास और ये वो कि बस वो जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए, ये अच्छी बात है, पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि बच्चे बहुत मुनासिब ग़िज़ा लें, लेकिन उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने ब्रेड पे बहुत ज़्यादा बटर लगा दिया कि इसको फैट चाहिए ग्रोइंग एज है, या आपने दूध में भी बहुत से लोग मक्खन डाल देते हैं, तो इस चीजों से आजकल ओबेसिटी की प्रॉब्लम, चाइल्डहुड ओबेसिटी आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चों की जो भी ग़िज़ा है उसको बैलेंस किया जाए, उसमें मुनासिब मकदार में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो मिनरल्स हो और विटामिन्स हो। उसके लिए सबसे बेहतरीन तो जो गजा हम लेते हैं घर में वही है, जैसे कि दूध वगैरह हो गया, अंडा जरूर दे बच्चों को खाने में, और कुछ इस किस्म की चीजें दे जिससे बच्चों की विटामिन और मिनरल की जरूरतें पूरी होती रहें। जैसे कि उनके नाश्ते या किसी चीज में हमने तिल डाल दिया, तिल कैल्शियम और आयरन का बहुत ही बहुत अच्छा सोर्स है, से बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या चीज खा रहा है और उसकी वो चीज गजा भी पूरी होती रहेगी। तो कहने का मतलब है कि उन्हें ओवर ईटिंग नहीं करानी है, लेकिन उनकी गजा को बहुत ही बैलेंस और बहुत हर चीज में मुनासिब रखना है।
सही। अधीन निषाद साहिबा बहुत शुक्रिया। बच्चे अगर नाश्ता ना करें तो उनका क्या हाल है? मारधाड़ के अलावा की बात बताइएगा।
ये बहुत ही एक बहुत आम सा ये मसला है, हर हाउस होल्ड हर घर में आपको देखने को मिलेगा कि सुबह सुबह एक जंग हो रही है कि पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि कुछ खा ले बच्चा और वो है कि खाने को राजी नहीं है। देखिए अक्सर ऐसा देखने में आता है कि बच्चों का जो नाश्ते का टाइम है वो हमसे काफी पीछे होता है। हम नाश्ता करते हैं 9, 9:30, 10 बजे और बच्चों को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्कूल जाने से पहले अपना पूरा नाश्ता कर ले, यानी करीब 6:30-7 बजे। तो एक तो ये टाइमिंग का थोड़ा गड़बड़ है, उतनी सुबह पर अगर हम भी खाएंगे ना तो हमारा खाने का मन नहीं करता है। तो इस चीज को पेरेंट्स को समझना चाहिए। इसका सबसे आसान हल यह है कि बच्चे को जो चीज बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे कभी कभी बच्चों को पोटैटो सैंडविच बहुत पसंद होती है या मैगी बहुत पसंद होती है, तो ये चीजें उनको दे। और अच्छा, आप जैसे मैगी उनको दिए तो हम सभी जानते हैं कि वो रिफाइंड फूड है या पैक्ड फूड है, वो उतना अच्छा नहीं होता बच्चे के लिए। लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा बॉइल्ड एग डाल दें बीच में,
ठीक है,
या थोड़ी सी उबली हुई मटर डाल दें, तो वो उसके लिए गजाइय से भरपूर भी हो जाएगा और वो खाली पेट स्कूल भी नहीं जाएगा। और एक छोटी सी बात ये कि उसको कोई फ्रूट दे दें। अक्सर बच्चों को सेब वगैरह पसंद होता है, वो खा लेते हैं, या फ्रूट जूस, वो तो अक्सर ही बच्चे पसंद करते हैं, बाहर का नहीं घर का निकला हुआ, जैसे मौसमी का, अनार का जूस, उनको छोटे से खूबसूरत से बड़े आजकल वो आते हैं सिपर्स वगैरह, उसमें डाल के दे दें कि जैसे बस या कार जैसे भी बच्चा स्कूल जा रहा है तो आप उनको समझाइए कि अब स्कूल जाते जाते इसको फिनिश कर देना है। तो उनको थोड़ा इससे ये भी होगा कि मुझे फोर्स नहीं किया जा रहा है, मुझे अभी ही नहीं खाना है, मैं बाद में भी खा सकता हूँ, उसको थोड़ी तसल्ली रहेगी। और उसको ये भी रहेगा कि चलो ठीक है मैं खाऊंगा तो अच्छा ही है मेरे लिए। उसको थोड़ा सा उसकी अहमियत का भी अंदाजा कराइए कि भाई ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा स्कूल में, तुम पीछे रह जाओगे या तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। इन सारी इन तरीकों से उसको समझाएं। और मारपीट तो जैसे आपने कहा कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है।
चलिए यहाँ तो समझ आ गई, मारपीट मुनासिब खाना नहीं है। बच्चों का लंच बॉक्स किस तरह तैयार किया जाए कि वो वापस उसको पूरा लेके ना आए?
ये बहुत ही अहम मसला है। आजकल स्कूलों में ये कर दिया गया है अक्सर स्कूलों में कि आप कोई इंस्टेंट फूड नहीं ला सकते, जैसे चॉकलेट बिस्किट या मैगी वगैरह। वो टीचर्स चेक करते हैं बाकायदा कि ब्रेड अगर लाए हो तो आपको नोट आ जाता है घर में। तो इसके लिए वालदैन के ऊपर ये हो जाता है कि भाई अब उन्हें पराठा वगैरह बना के देना है या ऐसी चीजें जो बच्चे खाएं। और मसला ये है कि बच्चे पराठा या सब्जी इस तरह की चीजें खाते नहीं है। तो आजकल एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं फिंगर फूड। फिंगर फूड ही होता है जो आप उठाकर बड़े आराम से खा लें, जैसे कि कटलेट हो गया, या बहुत सी ऐसी चीज होती है जैसे आपने फ्रेंच फ्राइज ही बनाई, जरूरी नहीं है कि आप उसको फ्राई करके बनाए। फ्रेंच फ्राई बेक करके और माइक्रोवेव में आप उसको बॉइल्ड फ्राइज को माइक्रोवेव में बेक करके भी दे सकते हैं, वो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है और उसको पूरा उससे गजाइयत भी मिलेगी। और उसमें आप बड़ी महारत से चाहे तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर में तिल उसमें लपेट के और फिर फ्राई करें, वो टेस्टी क्रिस्पी और उसको खाने में भी अच्छा लगेगा। मतलब ऐसी चीज दे जो वो पसंद करता हो। और ये चीज देखे कि जैसे वो मैकडॉनल्ड या ऐसी जगह जाता है तो
मेरे ख्याल से हमारा रब्ता जो है बिल्कुल जो है बिल्कुल कट हो गया हमारा। बहरहाल तीन निषाद साहिबा से बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारी चल रही थी और बच्चों के बारे में एक बड़ी उन्होंने जो खूबसूरत बात की वो ये के जबरदस्ती जो है ना खिलाएं बच्चों को, क्योंकि ये एक जिद सी हो जाती है बच्चों को। क्योंकि क्यों, दूसरी एक और बहुत अहम बात है रुबाब, वो ये है कि हम लोग हमारे फ्रिजों में हमारे किचन में सब कुछ मौजूद है, लेकिन अगर मुझे नहीं आप समझ आती कि मैं ये सही बात कह रहा हूँ या नहीं कह रहा, लेकिन दिखने में ये लगता है कि माएँ जो हैं वो उनको ये है कि बस सुबह एक अंडा फ्राई किया और वही खाना है बच्चे ने डिब रोटी के साथ।
मैं
ये चीज क्यों नहीं तब्दील
हुई? नहीं, मुझे खुद को भी इस बात का तजुर्बा है। अभी मुझे एक सवाल पूछना था जो अब कट हो गया हमारा जो रब्ता, कि सब कुछ है आप बच्चे को खाने में हर रोज एक नया चीज पे दे रहे हैं लेकिन नहीं खाते।
नहीं, जहां तक मुझे लगता है अगर आप बच्चे को वाकई वो चीज जो उसको पसंद है आप उससे पूछें, उसको लेके जाएं बाहर। और एक और चीज भी है ना, वो मसला ये है कि आप माएं जो आपके जहन में ये होता है कि अच्छी चीज खिलानी है बच्चे को, अंडा खिलाना है, जूस पिलाना है, भाई उसको पसंद नहीं है, आप उसको चॉकलेट, वो कुछ तो खाए ना वो, बजाय इसके कि वो, क्योंकि यहाँ पर एक चीज जो बड़ी दिलचस्प मैं अपने नाज़रीन के लिए बताता चलूँ वो ये कि नफ्सियात का हमारे खाने के हजम होने में बहुत बड़ा किरदार है। आप नाराजगी के साथ खाने को देख के उसको खाएंगे वो हजम नहीं होगा, ये नफ्सियात ने इस बात को प्रूव किया। हमने यहाँ पर चलना है एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फा लेते हैं उसके बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है, आप लोगों ने एक और खूबसूरत सी मौसीकी सुनी और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और सुनने में आया है कि हमारा रابطہ दोबारा हिंदुस्तान से हो गया है। मैं एक बार फिर डॉक्टर अतिया निषाद साहिबा की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और माजरत के साथ कि ये फनी खराबियां जो हैं ये होती रहती हैं आजकल के जमाने में। बहरहाल आप सवाल पूछना
जी, मेरा ये सवाल है एक बड़ा अहम सवाल, आप कुछ भी करें बच्चे खाना खाते ही नहीं, अब वो नाश्ता हो, खाना हो या रात का खाना, ऐसे सिलसिले में हमको क्या करना चाहिए?
जी ये बहुत ही अहम सवाल है, इसके दो पहलू हैं। पहला ये कि कभी कभी बच्चे को असल में कुछ ऐसी परेशानी होती है जिससे उसको खाना खाने का मन नहीं कर रहा होता है, जैसे कभी कभी लीवर उसका प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता है या और कोई इस किस्म की तब भी शिकायत उसको होती है जिसकी वजह से उसका खाने में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर ये कंडीशन प्रोलॉन्ग्ड है, जैसे एक महीने तक ऐसी कंडीशन है कि आप कुछ भी दे रहे हो और बच्चा खा ही नहीं रहा, ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो आपको पेडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट करना चाहिए, उसका एक मुआयना करवाना चाहिए, जाँच करवानी चाहिए कि इस किस्म की कोई शिकायत उसको नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कुदरती तौर पे खाने की तरफ रागिब भी नहीं होते, मतलब आप उनको कुछ भी अच्छा बना के दीजिए उनको पसंद ही नहीं आएगा खाने में, वो बस ठीक है खा लिया तो हो गया, तो वो चीज बचपन से ही होती है। और कुछ लोग खाने पीने के बेहद शौकीन होते हैं, यहाँ दिल्ली में चांदनी चौक है, गली है, वहाँ पे बहुत ही अच्छी चीजें मिलती है, बस वहाँ ही पाए जाते हैं, तो ये सारी चीजें बचपन से होती है और पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरा बच्चा कितना खा रहा है। जो बच्चे कम खाते हैं वो बचपन से शुरू से ही कम खाते हैं, मतलब बचपन में दूध भी वो कम पिएंगे, या जैसे दूसरा बच्चा घर में वो दो चॉकलेट खा रहा है तो वो एक ही खाएंगे, तो इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दिया। उनको जो भी वो खाते हैं उसको कैलोरी डेंस करने की जरूरत है, जैसे मान लीजिए उनको आपने मैगी, जैसे मैं बार बार मैगी का जिक्र इसलिए करती हूँ कि बच्चे वो शौक से खाते हैं, और जो बच्चा कुछ ही नहीं खाता, जैसे भी खुर्रम ने कहा कि कुछ भी खाए चाहे वो मैगी खाए, तो मैगी भी बना के दीजिए और उसमें आप थोड़ा सा मीट जैसे चिकन, बॉइल्ड चिकन डाल दीजिए, उसको पता भी नहीं लगेगा, वो बड़े आराम से खा लेगा, थोड़े बॉइल्ड एग बीच में तोड़ के घुसा दीजिए, उसको समझ में नहीं आएगा, वो शौक से खा लेगा, मतलब उसको जो भी खा रहा है उसको थोड़ा कैलोरी डेंस बनाइए, मेरे ख्याल में यही मुनासिब है।
अतिया निशा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद गुफ्तगू रही, इंशाल्लाह आगे के प्रोग्रामों में भी आपसे राबता करते रहेंगे।
जी बिल्कुल, बहुत मजा आया बहरहाल आपके साथ गुफ्तगू करके, बहुत मुफीद गुफ्तगू। मैं सिर्फ ये बताता चलूं कि हमारा जो हफ्ते के दिन का मौजू होगा वो दोबारा एक बहुत अहम मौजू, जैसा कि जैसा आज अहम मौजू था तगज़िए का, बिल्कुल उसी तरह हफ्ते के दिन का भी एक बहुत अहम मौजू घर की मईशत, जो पैसा के मुश्किलात हैं, पैसों को कैसे जो है मैनेज करना, और ये सारी चीज़ें जो है बातें हमारी रहेंगी। डॉक्टर मोहम्मद हमीद अमीर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे हफ्ते के दिन इंशाल्लाह, और हम लोग गुफ्तगू करेंगे। अगले हफ्ते का मौजू बड़ा हमने दिलचस्प रखा है और वो भी आप लोगों की मदद से रखा है, जितनी आपकी मदद ज़्यादा होगी उतना ही प्रोग्राम जो है बहरहाल मज़ा आएगा। मौजू जो है वो ये है कि कहाँ खामोशी अख्तियार की जाए और कहाँ जवाब दिया जाए,
बड़ा अहम मौजू है,
शेर बन गया ये बहरहाल जा रहा है कि कहाँ पर आपको जवाब देना है और कहाँ पर ये है कि आप चुप हो जाएं, बोले ना, मैसे अगर कोई आपसे कोई उल्टा सीधा किसी ने बात भी किया आप देखते हैं कि आपके ख्याल में जवाब देने का फायदा कोई नहीं है, या लेकिन कहीं पर जवाब देने का फायदा होता है, कहीं पर ना कहने का फायदा होता है। हमारे साथ रहिएगा प्रोग्राम में,
बिल्कुल, और हमें और खुर्रम भाई को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम रिस्क हलाल कमा सके। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।